वाल्मीकि जी आकर के, अरे बेटी तुम यहां पर चलो चलो मेरे आश्रम में, मैं सब कुछ जानता हूं, मैंने पहले ही रामायण लिख दिया है, चलो हमारे घर में बेटी के समान रहना। घर में ले गए आश्रम में, जहां पर स्त्रियां जहां भजन करती थी उनको सौंप दिया और वो सवेरे उनको हरि कथा सुनाते। दो बेटे वहीं पर हुए उनके आश्रम में, उनका नाम लौक और कुश रखा गया। शत्रुघ्न जी रास्ते में जा रहे थे मथुरा में, तो उनका दर्शन किया किंतु कुछ बतलाया नहीं किसी को, चुपचाप चले गए। कुछ दिनों के बाद में लौक कुश को इन्होंने पढ़ाया, सीताजी उनको धनुष बाण करना सिखलाया, बहुत वीर बने। जब 6-7-8 वर्ष के हो गए, 8 वर्ष के दोनों, तो उन्होंने सारी रामायण लिख करके उनको पढ़ाया। बड़ा सुंदर गला, राम जी जैसे ही देखते में लौक कुश का, ये जाओ ऋषियों के आश्रमों में जहां आदमी हो वहां पर ये रामायण सुनाना। आज वो निकले गोमती के किनारे, रामचंद्र जी सारी सेनाओं को, अपने मैया को तीनों को और भाइयों को लेकर के, बंदर सेना हनुमान इत्यादि सुग्रीव विभीषण सबको लेकर के वहां पर लाखों लोग वहां आए हैं। गोमती नदी बहती है नमिषारण्य में और वहीं पर राष्ट्रीय यज्ञ होगा। राष्ट्रीय यज्ञ हो रहा था, दोपहर में भोजन करने के बाद में 1 से लेकर के 3-4 बजे तक का समय फ्री रहता है, उसमें भगवान की कथा होती है पुराण की। ये दोनों बेटे पहुंचे, ये नहीं जानते हैं कि मैं राम का बेटा हूं और सीता जी हमारे राम की पत्नी है, ये नहीं जानते हैं। वहां पर उन्होंने सुनाना आरंभ किया, इतना सुंदर गला, इतने सुंदर, सब लोग देख करके आश्चर्यचकित हो गए। सीता जी का, रामचंद्र जी का भी वनवास और सब जो लीलाएं सुनी तो सब लोग रोने लग गए एकदम, मालूम ये आज ही ये देख रहे हैं। राम ने देखा, भाई ये कौन है बेटे, ये तो हमारे जैसे लिखते हैं। कौशिला जी सोच रहे हैं ये तो राम के बेटे जैसे ही ये लगते हैं। रामचंद्र ने लक्ष्मण जी को आदेश दिया, पूछो ये बेटे किसके हैं, इनका बाप का नाम क्या है, मैया का नाम क्या है, और इनको सोने के थाल में स्वर्ण मुद्राएं इसमें दो भर करके, हीरे मोती जवाहरात, और इनको पुरस्कार दिया जाए। राम ने, कौशल्या जी ने, ठीक है ठीक है, ये मालूम होते हैं ये राम ही जैसे हैं, ये बड़े हैं और वो छोटे, दोनों बालक रूप सब गुण बोली 40 अभी मिलते हैं, नाक की बनावट, मुख की बनावट, आंखें राम जैसी। लक्ष्मण जी उतर कर गए, बोले बेटो तुम्हारी इस कथा से और वीणा वादन करते हुए राम की कथाओं से रामचंद्र जी महाराज और सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं। तुम्हारा परिचय क्या है, तुम्हारे बाप का नाम क्या है? लौक कुश बोले, आपको मैं समझता था जो शास्त्रज्ञ और धर्मात्मा आप हैं, किंतु मैं तो देखा जैसे आपको कुछ पता नहीं शास्त्र का विचार। अरे हम ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारी का गुरु का नाम पूछना चाहिए, माता पिता के से नाम से आपका क्या परिचय? सन्यासी को ब्रह्मचारी का माता पिता का परिचय नहीं होता। मैं ब्रह्मचारी हूं, देख रहे हैं ना, मेरे गुरु जी का नाम वाल्मीकि है, बस यही मेरा परिचय है और कोई परिचय नहीं। लक्ष्मण जी का मुख नीचे हो गया। तब उन्होंने कहा जे, तुमको राजा ने ये दान उपहार दिया है, बहुत प्रसन्न होकर के तुम सुंदर गाते हो, वीणा बजाते हो। उन्होंने ये इसे हमें क्या जरूरत, ये तो आप अपने खजाने में रखिए, हमारे गुरु जी के बगीचे में केले अमरूद आम ये सब बहुत भरे पड़े हैं, खाने के लिए पत्ते हैं, अंजलि हमारी है, पीने के लिए गोमती में पानी से हम लोग पानी पी लेते हैं, मिट्टी के घड़े हैं उसमें पानी भर लेते हैं, पहनने के लिए हमारे केले के पत्ते हम पहन लेते हैं, हमें इससे क्या जरूरत है, हमें इससे कोई भी आवश्यकता नहीं है, ये आप खुद रखिए। उनका त्याग वैराग्य देख करके दंग रह गए। आज हम सन्यासी लोग जब किसी के यहां जाते हैं तो लोग डरते हैं ये पैसा मांगेगा, किंतु आप समझिए मैं पैसा लेने के लिए नहीं आया, हम भारतीय संस्कृति देने के लिए आपको और ये भागवत की कथाओं को देने के लिए, भक्ति को देने के लिए आया हूं, मुझे पैसे से एकदम जरूरत नहीं है, मुझे शिष्य भी नहीं चाहिए, कुछ लोग डर रहे हैं कि ये हमारे आदमियों को भड़का करके ले लेंगे। अरे हमें क्या जरूरत है, हमें पैसे की एकदम जरूरत नहीं है, हम अपना जो संपत्ति भक्ति है प्रेम है आपको देने के लिए आए हैं, आप लोग उसको ग्रहण करेंगे, हमें आप लोग क्या देंगे, वो तो घर में छोड़ करके आए हैं। उस तरह से आप समझिए, हम लोग पैसे के लिए नहीं आए। लोग समझते हैं कि भारतवर्ष एक गरीब देश है, यहाँ के लोग यहाँ पर पैसा कमाने के लिए आए, हम लोग ऐसे नहीं आए हैं। हमारी संस्कृति नहीं ऊंची है कि जगत के लोग ये थोड़ा सा भी ग्रहण करें तो उनका आनंद हो जाएगा, इसलिए अपनी संस्कृति को खबरदार आप मत भूलेंगे। आप जानते हैं अतिथियों को शरण देने के लिए हमारे शिव ने अपने शरीर को दे दिया, कबूतर बन करके आया था और बाघ बन करके इंद्र। आप जानते हैं इस कथा को, सुने होंगे, अपने प्राणों को दे दिया। इंद्र ने कहा बाघ बन करके आ, ये कबूतर मेरा खाद दे दो, हमको छोड़ो, हम इसको खाएंगे। उन्होंने उसके बदले में तुम और कुछ ले लो, अच्छा तुम अपना मांस दे दो। उन्हें हाथ काट करके दे दिया, पैर काट के, सभी नहीं भरा तो अपने आप खुद बैठ गए। ये भारतवर्ष है ना, ये संस्कृति हमारी है। शत्रु भी हमारे घर में आएगा उसका आदर करेंगे ना, ये हमारी भारत की संस्कृति है। ये नहीं कि मित्र और गुरु जी का सेवक भी आए तो उसको घर से बाहर कर दो, उसको मत कहो जैसे ये तुम अपने घर में उनको स्थान मत देना, ये ऐसा कोई कहता है भारतवर्ष का? आप लोग जानते हैं दधीचि को देवताओं के कार्य के लिए, जगत के मंगल के लिए महाराज दधीचि के यहां इंद्र गया, बोला ये तुम मांगो क्या चाहते हो, तो आपको देना पड़ेगा तो जरूर देंगे। उन्होंने कहा जी अपनी हड्डी देनी है जीवित स्थिति में। अरे हंसने लगे, इतना स्वार्थी तू, इतना स्वार्थी है कि हमारा जीवित रहने में भी हार मांग रहा है, तो इसके अतिरिक्त और कोई जगत को बचाने के लिए रास्ता नहीं वृत्तासुर से, इसलिए आपकी हड्डी देनी पड़ेगी। उन्होंने कहा ठीक है, अपने शरीर में गाय का दही और बूरा लगा करके चारों तरफ से चटवा दिया और जीवित रहते हुए प्राण को छोड़। ये हमारा भारतवर्ष है ना, इसको समझेंगे। आप दूर आएंगे किंतु भारत की संस्कृति मत छोड़ेंगे। रव कुल रीत सदा प्राण जाय बरु, ये सब को याद रखेंगे, अपने भारतीय इसको मत छोड़ेंगे, समझेंगे छोड़ेंगे। वो लोग नहीं समझ रहे हैं कोई कोई लोग, क्योंकि भारत में जन्म नहीं है शायद, इसलिए इसको समझेंगे अच्छी तरह से। शत्रु आएगा और शरण चाहेगा नहीं देंगे। विभीषण शत्रु आया राम के पास में, उन्होंने शत्रु उन्होंने पूछा सुग्रीव जी से, आज हमारे मंत्री यहां बतलाइए ये आ रहा है, इसको सनाह दो कि नहीं, शरण गाती देखू नहीं। कहे नहीं नहीं नहीं, इन पर विश्वास मत कीजिए, है तो उसका भाई, अधिकारा फिर पीछे उलट जाएगा। और दूसरों से कहा जी भाई ठीक ही कह रहे हैं सुग्रीव जी। हनुमान जी को बुलाया, हनुमान जी तुम परामर्श दो। उन्होंने कहा जी प्रभु जो कोई भी शत्रु भी शरण में आ जाए उसको आप पनाह देंगे, क्यों, ये हमारी संस्कृति है, आपका क्या कर लेगा, आप तो एक दृष्टि से विश्व का प्रलय कर सकते हैं, लाखों लाखों जगत की सृष्टि कर सकते हैं, आपका ये क्या कोई बिगाड़ सकता है। रामचंद्र जी हंसने लगे, तुम ठीक कह रहा है। उन्होंने बुलाया और राज तिलक दे दिया। ये भारतवर्ष की रीति है ना, हमारा सर्वस्व कोई मांगता है तो दे देंगे, ये भारत की संस्कृति है। हम लोग इसको देने के लिए भारत संस्कृति हम आए हैं। हरेर नाम अयो केवल कलो नास्तेव गति था। गुरु वैष्णव की सब समय सेवा करेंगे, यदि साधु संग नहीं किया, साधुओं की सेवा नहीं की, तो ये जीवन व्यर्थ है। साधु संग से ही प्रहलाद महाराज जी कैसे बन गए नारद जी के संग से, उस नारद का जी का हम अनादर नहीं कर सकते। स्वामी जी ने जगत का उद्धार किया, उनका हम गुरु रूप में मानते हैं सभी लोग, उनका अनादर हम कभी नहीं कर सकते। वैष्णव का अनादर कभी नहीं करना चाहिए। एक बार भी मुख जिसके मुख से निकल गया हरे कृष्ण, समझो ये हमारा अपना है, ऐसा समझो। उनको आदर दो, उनका सर्वस्व दे देने से भी कल्याण ही होगा, इसलिए संतों का आदर होना चाहिए। और जो दीक्षा लेकर के और हमारे गुरु जी की सेवा है, उनका कुत्ता भी आकर आए तो उसको प्रणाम करो कुत्ते को, जी हमारे गुरु जी की तूने सेवा की, मैं तुम्हारा ऋणी हूं, ऐसा भाव होना चाहिए संतों के प्रति। साधु संग सर्वशास्त्र, ऐसा ये सब ठीक रखना चाहिए। तो और चले प्रसंग पर, थोड़ा सा देरी होगी कोई बात नहीं, थोड़ा सा 5 मिनट में अपने प्रसंग को समाप्त करूंगा। बीच बीच में ये लोग तो मुझ को सहारा दे ही रहे हैं। अब जब लौकुश जब चले आए, सीता जी अपने घर में कुटी में कहीं बाहर देख रही है, भीतर देख रही है, बेटे कहां गया, बहुत देर हो गई, विलंब हो गया। उन्होंने देखा कि कहां गया बेटा। थोड़ी देर के बाद में दोनों बेटे आए, गोदी में ले लिया, एक को बाएं एक तरफ से दाहिने। बेटा बड़ा विलंब हो गया, क्यों देरी हुई मैया? एक बड़ी विचित्र बात हम लोगों ने देखी, आज कोई राम नाम का कोई एक राजा है, वो सब भैया का नाम लक्ष्मण है, शत्रुघ्न और भरत, कोई उसकी मैया भी कौशल्या इत्यादि है, तो बोलो कि यहाँ पर राज्य में, यहाँ पर राजसूय यज्ञ कर रहे हैं और दोपहर में खाली थे, हमने वहां पर सुनाना आरंभ किया, उस सबकी आंखों से आंसू आ गए, मैया सभी लोग रो रहे थे। वहां पर एक विचित्र बात देखी, क्या देखा बेटा? वहां पर एक सोने की मूर्ति हमने देखी और वो सोने की मूर्ति ठीक तुम्हारे जैसे ही, कोई भेद नहीं, तुम बोल रही हो वो बोलती नहीं थी, बस इतना ही अंतर था। सुनते ही सीता जी की आंखों से झरझर झरझर करके नेत्रों से पानी, बड़ी जोर से सोने। बेटे ने कहा, अरे भैया तू रोती क्यों है? अपने अपने इससे कपड़ों से उसका और उतनी ही रो रही। सीता जी ने सोचा, राम ने मुझे नहीं छोड़ा, राजा ने रानी को छोड़ा है किसी कारण से, मर्यादा की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, हमें छोड़ नहीं सकते। बात हुई क्या? वो सोने की मूर्ति कौन सी थी? सीता जी की थी। कैसे हुई? रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी से कहा, हमें यज्ञ करना है, आप आदेश दीजिए मैं यज्ञ करूं। सुना है, तुम यज्ञ नहीं कर सकते। क्यों? तुम योग्य नहीं हो। क्यों योग्य नहीं? अविवाहित व्यक्ति नहीं कर सकता, सीता जी का तुमने प्रत्याग कर दिया है बिना कारण का ही, तुम यज्ञ नहीं कर सकते। सीता जी को बुलाओ, बाएं पैर से में बैठ करके गांठ जोड़ करके और यज्ञ करो। कहीं ये तो नहीं हो सकता, तो यज्ञ नहीं हो सकता, सीधी सी बात नहीं, फिर भी हमको यज्ञ कराइए। अब एक बात करो, तुम्हारे पिताजी की 360 रानियां थी, तो तुम्हारी एक है ना, एक और कर लो, कोई बात नहीं। नहीं, मैं तो ये कर नहीं सकता, मैं सीता के अस्तित्व और दूसरी स्त्री से विवाह नहीं कर सकता। तो फिर यज्ञ नहीं करोगे? नहीं गुरु जी, आप कृपा करके, आप बड़े विद्वान आदमी हैं, शास्त्रज्ञ हैं, लाखों लोगों को यज्ञ कराए, हमारा यज्ञ करा दो। तो ठीक है, एक बात करो, सोने की सीता बनाई जाए, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसको बाएं तरफ रख करके गठबंधन करके तब स्वाहा स्वाहा करो। कहते ठीक, मुझे मंजूर। सीता जी बनी, बतलाओ यहाँ पर रामचंद्र जी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हो, वहां पर सीता जी के प्राण नहीं आ जाएंगे? वो एकदम सीता जी हो गई। रामचंद्र जी यज्ञ कर रहे हैं, सीता जी कह रही राम ने मुझे नहीं छोड़ा, छोड़ नहीं सकते। रामचंद्र जी का कैसा चलता है जीवन? राजवन में है किंतु चटाई के ऊपर में सोते हैं, जैसे सीता जी वन में है, उनको नींद नहीं आती। सीता जी अपने बेटों को लेकर के कुछ सो जाती हैं। राम को सांत्वना देने वाला कोई भी नहीं है, सीता जी को सांत्वना देने वाले वाल्मीकि जी हैं वहां पिता के रूप में। राम दिन रात डकरते हैं सीता जी के लिए, कौन जानता है? कोई नहीं समझ। राम को कितना दुख है कोई नहीं समझते। इसको कहते हैं विप्रलम्भ भाव। प्रेम के दो पहलू होते हैं, एक मिलन और दूसरा होता है विप्रलम्भ। दोनों को समझना चाहिए। राम या कृष्ण निष्ठुर नहीं है सीता जी को या राधा जी को, और वृंदावन को छोड़कर के कृष्ण द्वारका में चले गए। वृंदावनम प्रत्यज पाद एकम न गच्छति, वृंदावन को छोड़कर के कहीं नहीं जाते। इनको समझना चाहिए। कहां से समझेंगे? कैसे समझेंगे? बिनु गुरु भवनिधि तरे न कोई, यों दिरिंत शंकर सम होई। शंकर और ब्रह्मा के समान भी कोई होगा, जब तक गुरु बोनाफाइड नहीं होगा, योग्य गुरु नहीं मिलेगा, सदगुरु नहीं मिलेगा, तो ये ज्ञान नहीं हो सकता है, नहीं समझ सकते। दूसरे दिन की बात यहां तक तो हो गई। दूसरे दिन में रामचंद्र जी ने वाल्मीकि जी को बुलाया, मुझे ऐसा आभास मालूम पड़ रहा है कि सीता जी तुम्हारे घर में है, मेरी प्रिया जी। तुम उन्हें बुलाओ और हमसे मिलन कराओ। बाल्मीकि जी, ठीक मैं बुलाता। उन्होंने लिख रखा था कि ये बातें होंगी और वही हो रहा है। सीता जी के पास में, बेटी एक बात है, तुम्हारे पति तुम्हें बुला रहे, तुमको जाना उचित है। उन्होंने कहा कि जो तुम आदेश आप देंगे, आप मेरे पिता हैं, सर्वस्व हैं, इसलिए आपने हमें पाला पोसा, इसलिए आप जैसा कहेंगे वैसा करो। तो ठीक है, चलो। वो आगे चले, पीछे से सीताजी और दोनों बच्चों का हाथ पकड़ते हुए सीताजी राजसभा में पहुंची। सारी सभा एकदम बैठी है, सीताजी को देख करके सभी लोग उत्सुक हो गए। कौशल्या जी, कैकेयी, सुमित्रा, राम, लक्ष्मण, भरत, सभी, क्या होने वाला है। जब वो आई, सीताजी ने राम को प्रणाम किया। राम ने कहा कि प्रिय, तुमको बहुत कष्ट मैंने दिया, तुमको बिना कारण मैंने छोड़ दिया, लोग रंजन के लिए, मर्यादा के लिए, किंतु तुम सब लोगों के सामने ये दिखलाओ कि तुम पवित्र हो, एक बार और प्रणाम कर दो, एक बार और प्रणाम मुझे प्रमाणित करना पड़ेगा। ठीक, मैं प्रमाण करती हूं। धरित्री माँ, पृथ्वी आप मैया हो, तुम जल्दी से फट जाओ, तुम्हारे अंदर में हमको बोधि मिले, अब जगत में नहीं रहना चाहिए। यदि सचमुच में राम के अतिरिक्त मैंने किसी को नहीं अपना मन दिया हो, यदि अपने किसी तन मन वचन से किसी को नहीं स्पर्श किया, हे पृथ्वी तू फट जा और तुम हमें अपनी गोदी में ले ले। ये तीन बार कहते ही पृथ्वी फट गई, सिंहासन निकला, पृथ्वी भू देवी आई, सीताजी को अपने गोद में ले लिया और झट एकदम पृथ्वी फट गई। सब लोग हाहाकार कर उठे, राम हाहाकार करके धनुष लेकर के उठे, लक्ष्मण जी रो, हनुमान और कौशल्या, सारी सभा, सभी लोग रोने लग गए, क्या हो गया। राम ने कहा जी पृथ्वी तू मेरी सास है, मैं तुम्हें समुद्र की भांति तुम्हें उड़ा दूंगा, तुम जल्दी से हमारी प्रिया को दो, उसके बिना मैं रह नहीं सकता। वाल्मीकि जी ने कहा जी शांत होइए, शांत होइए, अब आपकी लीला समाप्त है पृथ्वी, ये सीता जी आपको गोलोक में, वृंदावन में, अयोध्या में, साकेत में, ऊपर नारायण के लोक से ऊपर आपके लिए प्रतीक्षा कर रही हैं, आप वहां पर पधारिए, अब लीला की समाप्ति होनी है, आप अपने होश में आइए, अब चलना है वहां, आप जिस काम के लिए थे वो काम हो गया पूरा, इसलिए वहां पर प्रतीक्षा कर रही हैं। राम को धैर्य हुआ, उन्होंने लवकुश को राजगद्दी पर बिठाया, लक्ष्मण और सबको अपना अपना उन लोगों का राज्य बच्चों को दे करके और सारी अयोध्या को लेकर के सरयू के माध्यम से लीला सुना। इसमें आप लोग भक्ति को समझेंगे, हमारी भारतीय संस्कृति को समझेंगे, प्रेम किसको कहते हैं इसको समझेंगे, सारी शिक्षाएं पर भारतीय सनातन धर्म से आप तनिक भी किसी के कहने से भी नहीं इधर से उधर होंगे, उसमें स्थित रहेंगे, सब लोगों की सहायता करेंगे, हमको ये पैसे की भी जरूरत नहीं, हमारे वचनों को आप लोग ग्रहण करके अपने धर्म में स्थित रहेंगे। और इन्होंने जो पुस्तकें लिखी हैं स्वामी जी ने, उनको देखेंगे, पढ़ेंगे, उनको भी गुरु के रूप में लेंगे, जैसा हम अपना शिक्षा गुरु के मानते, किसी के कहने में हमको ऐसा मत कहेंगे जैसे उनके विरोधी हैं। मैं प्राण जान पर भी रव कुल रीत, मैंने भक्तों की रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरु, हम भी उसी रूप में हैं, इनको शिक्षा गुरु के रूप में हम देखते हैं, इनका कल्याण चाहते हैं, इनका कल्याण हो, कल्याणम भवतु, मंगलम भवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु, सबका कल्याण, यही कह करके मैं आज अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। मेरी इच्छा है, मैं आया था दोष उद्देश्य से, स्वामी जी ने हमको कहा था आने के लिए, मैं आया जी जहां जहां पर उनके चरण के चिन्ह पड़े हैं उनको अपनी मैं तीर्थ भूमि समझता हूं, उनके चरणों की धूली अपने अंगों में लगा करके अपने जीवन को सार्थक करूं, पहला तो उद्देश्य ये था। दूसरी बात, उनकी बातों का प्रचार करूंगा, भक्ति का प्रचार करूंगा, नाम का प्रचार करूंगा सारे देशों में, और उनके जो उपेक्षित लोग हैं जिनको बहुत से छोड़ करके 99 सुनते हैं कि 90% लोग छोड़ दिए हैं, उन सबको एकत्र दे करके उनमें फिर से प्राण संचार करके उनको भगवत भक्ति में निवेश। हमारे जो प्रवासी हिंदू हैं यहाँ पर, भारतीय हैं, चाहे हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन, चाहे वो ये यहाँ के गुजराती हो, चाहे बंगाली हो, चाहे उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, चाहे मद्रासी हो, हम सभी एक हैं, हम अपनी संस्कृति को ठीक रखेंगे, इस सब के लिए हम आए हैं। बहुत महान उद्देश्य है जो हमारे पूर्वज पूर्वजों का उद्देश्य है। इसलिए मैं आप लोगों से मिलकर के बहुत प्रसन्न हुआ। गलत रूप में हमको मत समझेंगे लोगों के कहने से भी। कल मैं सोचता हूँ हमें से ये लोग बुलाएंगे नहीं तो मैं भी उनको दर्शन करने के लिए सवेरे आरती में जाना चाहता हूँ। आप लोग भी कृपा करके यदि उपस्थित हो तो बहुत अच्छा है। मैं उनका दर्शन करके उनके चरणों में पुष्पांजलि देना चाहूंगा। और यदि कहेंगे ये मत आओ, मैं उनके द्वारराजे पर मत्था टेक करके फिर वहां से लौटाऊंगा। मैं कुछ भी नहीं कहने जा रहा। इसलिए आप लोग भी सवेरे यदि 7 बजे चल सके हम लोग कल साथ जाएंगे। इस तरह से मेरा मिशन सफल। मैं आनंद आप लोगों से मिलकर के बहुत खुशी हुई। आप लोगों को हिंदी में तो कुछ बातें कर बस आज यही तक समाप्त हो। वंछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां। आपको कुछ करना है?
हरे कृष्णा।
कुछ करिए।
हरे कृष्णा।
इसके लिए खास बता देना कल गुरुवार को मंदिर में प्रोग्राम है शाम को।
कल
He will explain this to you there because it will be so late.
Krishna Kripa Murti Srimad Bhaktivedanta Rai Maharaj ki mukharvind se aur bhakti ki ganga beh rahi hai. Humko laabh lena chahiye, gota lagana chahiye mandir mein bhi aur is tarah hamare congregational members hain unke ghar bhi. Aur आप सभी लोग आइए कल शाम को गुरुवार 7:30 बजे की आरती होगी शाम को। और उसके बाद महारात्रि का फिर 1 घंटे के लिए प्रवचन है, सत्संग है। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। और कल सुबह महारात्रि की इच्छा है कि पहले टेंपल जाएं और वहाँ प्रभुपाद जी ने अपना बहुत सारा समय व्यतीत किया था तो उनकी पद धूलि लें और उनके पाठर का सब जगह दर्शन करें। तो जो भी साथी आना चाहे आ सकता है। और कल शाम को फिर मंदिर में प्रोग्राम है। फिर शुक्रवार को और प्रेम गुप्ता और दीना गुप्ता के यहाँ प्रोग्राम है शाम को। और फिर उसके बाद हमारे प्रफुल भाई हैं, प्रफुल भाई जी के यहाँ प्रोग्राम है शाम को। और रविवार को सुबह महारात्रि गीता क्लास देंगे और शाम को फिर शुद्ध हिंदी में और महारात्रि की कथा होगी, प्रवचन होगा।
और शुक्रवार को सुबह किसी को भी टाइम मिले,
शुक्रवार को सुबह और हमारे प्राण जीवन प्रभु हैं उनके घर महाराज जी पधारेंगे। और इस तरह का पूरा हफ्ते का प्रोग्राम है। जितना लाभ ले सको उतना लाभ लीजिए। दुर्लभ लाभ है, फिर जीवन में पता नहीं कि लाभ मिले या नहीं मिले। शास्त्रों ने भी कहा है, संतों ने भी कहा है कि सत संगत मुद्दा। सबके संतों का संग करने से और सत्संग करने से हमारे जो कल्याण का दरवाजा है एकदम खुल जाता है। और ऐसे पवित्र शुद्ध और भगवत कृपा प्राप्त ब्रजवासी जीवन भर जिन्होंने वृंदावन की धूल में लोट लगाई है, वृंदावन की पद धूलि सब जगह जहाँ भगवान की लीला है सब जगह पता नहीं कितनी बार महाराज श्री ने और 84 कोस की परिक्रमा की होगी।
50 बार।
वाह, 50 बार जो है पूरा ब्रज मंडल की 84 कोस की। और एक एक मतलब हर बरस महाराज श्री परिक्रमा करते हैं। तो हमने एक बार सुना था एक संत से, वो जयपुर कहीं किसी राजा के यहाँ गए थे। वो भगवान के भक्त थे तो वो राजा ने वो ब्रजवासी के कपड़ों का मैल निचोड़ के पिया। तो महाराज जी ने बोला कि आप ये कपड़े का मैल क्यों पी रहे? तो वो राजा ने बोला कि नहीं महाराज, ये मैल नहीं है, ये तो ब्रज रज है। तो ऐसे पावन पवित्र पगला जीवन में फिर चाहे मिले या नहीं मिले लाभ लीजिए. हरे कृष्ण हरे
कृष्ण.
Yes.